हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आज तारा परी ऑफिस से जल्दी चली गई थी। अमन को लगा था कि वो सीधा घर गई होगी और करिश्मा मॉम के साथ समय बिता रही होगी, लेकिन अमन को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि तारा घर नहीं गई थी, वो धारा से मिलने गई थी। वो धारा के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तारा के जाने के बाद अमन का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपने घर वापस लौटना चाहता था ताकि तारा के साथ समय बिता सके। वैसे भी तारा से उसे अब दिल से मोहब्बत हो गई थी। पहले तो वो खाली उसकी खूबसूरती को प्यार करता था, लेकिन अब दिल से वो तारा को चाहने लगा था। इसीलिए उसके बगैर एक पल भी रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अमन को एक एक पल बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था। तारा उसके सामने ऑफिस में रहती तो वो उसे देखता रहता, उसे समय का पता ही नहीं चलता। सोचिए, आज तारा आधे दिन की छुट्टी लेकर पहले ही चली गई थी, तो अमन को वो आधा दिन काटना बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था। मल्लिका और अमित अमन की बेचैनी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। तब मल्लिका ने अमित से कहा, बस कुछ दिन और, बस दो दिन बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो प्लान है, अगर वो काम कर गया तो अमन मेरी बाहों में होगा और तारा आपकी बाहों में। ऐसा कहकर वो दोनों ही एक शैतानी हंसी हंसने लगे थे। आखिर क्या था उनका इरादा, ये बात उन्होंने अभी तक रिवील नहीं की थी। उन्हें बस इंतजार था आने वाली पार्टी का, और एक बार अगर अमन उस दिन मल्लिका का नहीं हो पाता, लेकिन उनका प्लान इतना मजबूत था कि तारा तो उनकी जरूर हो जाती उनके हिसाब से। अब देखना ये था कि ऐसा वे क्या करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर तारा परी को ये पता चल चुका था कि धारा को अगवा किया गया था, और धारा को अगवा किसी और ने नहीं बल्कि उस एमएलए के बिगड़े हुए बेटे सुधीर मिश्रा ने किया था, जिसने धारा पर पहले भी तेजाब से हमला करवाया था। उस वक्त तारा परी को इतनी सुधबुध नहीं थी कि वो धारा की मदद कर सके। उसने केवल धारा के चेहरे को ठीक कर दिया था, और उसका खमियाजा ही उसे भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि धारा का चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। इसीलिए सुधीर मिश्रा का दिल उस पर आ गया था, इसीलिए उसने उसे अगवा करके अपने फार्म हाउस में रखा था। तारा परी ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि धारा कहाँ पर है, और उसने देखा सुधीर मिश्रा ने धारा को एक बिस्तर पर लिटाया हुआ था। उसके दोनों हाथों को और पैरों को बांधा हुआ था और केवल एक चादर से उसे ढक रखा था। सुधीर मिश्रा बड़ी ही बेशर्मी से धारा को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था, और उसके बाद जैसे ही वो उसे किस करने के लिए उसके जिस्म पर ऊपर की ओर जाने लगा था, तारा परी ने उसे रोक दिया था और उसे धक्का देकर एक साइड फेंक दिया था। सुधीर मिश्रा को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि उसे धक्का किसने दिया और किसने उसे छूने से रोका, जबकि उसे पूरे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तारा परी ने तो जादुई माला का प्रयोग करके खुद को अदृश्य कर रखा था, जिसका मतलब साफ था कि उसे कोई भी नहीं देख सकता था, वो सबको देख सकती थी। सुधीर मिश्रा काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर चूंकि वो नशे में था तो उसने इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए एक बार फिर वो धारा के पैरों की ओर बढ़ने लगा था। वो धारा के पैरों से किस करना चाहता था, और जैसे ही उसने धारा के पैर को छूने की कोशिश की, तब तारा परी ने झटके से उसका हाथ मरोड़ दिया था और एक बार फिर उसे उठाकर पटक दिया था। अब सुधीर मिश्रा की हालत खराब होने लगी थी। अब उसे लगने लगा था कि जरूर इस कमरे में कोई और मौजूद है। वहीं धारा भी हैरानी में बुरी तरह थी कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर इसको कौन उठाकर पटक रहा था, क्योंकि दूर दूर तक उसे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब तारा परी आगे बढ़ी और उसने सुधीर मिश्रा का सिर पकड़कर लगातार दीवार में मारना शुरू कर दिया था, और वो जब तक उसके सिर को दीवार पर पटक पटक कर मारती रही, जब तक उसका सिर खून से लहूलुहान नहीं हो गया था और वो गिरकर बेहोश नहीं हो गया था। सुधीर मिश्रा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो चुका था। वहीं सुधीर मिश्रा की ऐसी हालत देखकर धारा बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है, जरूर यहाँ कुछ न कुछ भूत प्रेत की आत्मा हो सकती है जो सुधीर मिश्रा को इस तरह से मार रही है।
तभी अचानक धारा को एहसास हुआ कि कोई उसके हाथ खोल रहा है। जल्दी ही तारा परी ने धारा के दोनों हाथ पैर खोल दिए थे और जादुई शक्ति से एक जोड़ी कपड़े धारा को पहना दिए थे। धारा ने जैसे ही खुद को देखा और अपने कपड़े पहने हुए देखा तो उसकी आंखें भर आई थीं, क्योंकि पूरे 6 महीने बाद उसके जिस्म पर कोई कपड़ा आया था, वरना पिछले 6 महीने से उसे सुधीर मिश्रा ने बिना कपड़ों के नंगा ही कैद करके रखा था। धारा को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसका शुक्रिया अदा करे जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन किसी को ना देख पाने के कारण धारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी और कहने लगी थी, आखिर आप हैं कौन? प्लीज मेरे सामने आइए, आपने मेरी जान बचाई है, प्लीज मेरे सामने आइए। ऐसा कहकर धारा रोने लगी थी। तभी तारा परी ने बोलना शुरू कर दिया था, धारा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कोई भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आई हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर तारा परी ने धारा का हाथ पकड़ लिया था। धारा को महसूस हो गया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और जल्दी ही सुधीर मिश्रा के सब आदमियों की नज़रों से बचाते हुए तारा परी धारा को उस फार्म हाउस से बाहर ले आई थी। क्योंकि धारा पिछले 6 महीने से कैद थी तो उसका पूरा का पूरा जिस्म काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तारा परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो धारा को खुद को भी नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि धारा उसे अच्छी तरह से पहचान लेती, क्योंकि वो वही थी जिसने उसके निशान को ठीक किया था। इस तरह से धारा के सामने आना काफी ज्यादा बड़ा रिस्क हो सकता है, ये सोचकर तारा परी उसके सामने नहीं आई थी, लेकिन उसे कुछ न कुछ करके उसकी मदद तो करनी ही थी, क्योंकि उसका पूरा जिस्म बेहद कमजोर और बेजान सा हो गया था। तभी तारा परी ने कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग करके एक जूस के ग्लास में कुछ मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया था और जल्दी ही कुछ पढ़कर उसने धारा को दे दिया था। धारा ने बिना सोचे समझे वो जूस का ग्लास तारा परी के हाथों से ले लिया था। तारा परी का दिया हुआ जूस पीते ही धारा के अंदर एक अलग सी ताकत सी महसूस होने लगी थी और अब वो अपने आप को बिल्कुल फिट और ठीक महसूस करने लगी थी। उसके शरीर के जितने भी जख्म थे वो सब भरने लगे थे। धारा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। तब धारा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर तारा परी से विनती की थी, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर प्लीज जिसने मेरी इतनी मदद की है मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ और मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धारा की बात सुनकर तारा भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और उसने धारा से कहा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। और जल्दी ही तारा परी ने अपनी माला उतार दी थी और वो धारा के सामने खड़ी थी। जैसे ही धारा ने तारा परी को देखा उसने एक झटके से ही उसे पहचान लिया था। वो समझ गई थी कि यही वही लड़की थी जिसने उसे मरहम लगाकर उसके तेजाब के घाव को भरा था।
धारा ने जल्दी से तारा को गले से लगा लिया था। तारा परी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, धारा की मदद करके उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब धारा ने तारा से सवाल किया था, आप हैं कौन और आप गायब कैसे हो सकती हैं और आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आज की सदी में भी ये शक्ति वगैरह कुछ होती है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से वो राक्षस मेरे जिस्म को नोच रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद की किरण नहीं छोड़ी थी और आज मेरी उम्मीद और मेरा भगवान मेरे साथ था, जिसके वजह से मेरी जान बची है और आपको मेरी जान बचाने का जरिया बनाया है। तब तारा परी ने धारा से कहा था, मैं जानती हूँ ये सब कुछ देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरा यहाँ आने का कारण आपसे एक जरूरी काम था। धारा आश्चर्यचकित रह गई थी कि इतनी ताकतवर लड़की को भरा उसे क्या मदद चाहिए थी और उससे क्या जरूरी काम हो सकता था। तब तारा परी ने धारा से कहा, धारा मैं कौन हूँ कौन नहीं तो प्लीज तुम मुझे ये जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगी कि मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जो कोई भी हूँ जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे गुण हैं। तारा परी की बात सुनकर धारा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है ये सब, क्या कह रही थी भला, धारा ने तो ऐसी क्या मदद करी थी तारा की जो वह सारा श्रेय धारा को दे रही थी।
तब धारा ने कहा, लेकिन मैं तो आपसे उस दिन के बाद केवल आज ही मिली हूँ और मदद तो आपने मेरी की थी, तो फिर मैंने ऐसा क्या किया कि आपको लग रहा है कि मैंने आपकी मदद की है? तब तारा परी ने धारा से कहा, मेरे अंदर आपके इंसानी गुण हैं, मैं आप ही की तरह सोचती हूँ, आप ही की तरह बोलती हूँ, लेकिन आज तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से मैं अटक गई हूँ और केवल यही जानना चाहती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? तारा परी की बातें धारा के सर के ऊपर से जा रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की जो कि खुद इतनी शक्तिशाली है वह उसे क्या मदद चाहती है और क्या उसे समझ में नहीं आया है। तारा भी समझ चुकी थी कि धारा को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, और होता भी क्यों ना, धारा एक मामूली इंसान थी और तारा एक परी, तो उसकी बातें उसके सर से ऊपर से जाना तो लाजमी था।